आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित करीब 7,000 विशिष्ट लोग बनेंगे ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा। प्रधानमंत्री ने नए श्रम सुधारों को देश को मजबूत बनाने के प्रति सरकार की वचनबद्धता का प्रतीक बताया। कहा, दुनिया एक वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को कर रही है स्वीकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बागपत के बड़ौत रेलवे स्टेशन से 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए मिशन के रूप में काम कर रही है सरकार। और जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में हुआ निधन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने जताया दुख। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं। वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने का प्रतीक होगा। एक रिपोर्ट।
ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रभु राम और माता सीता की विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में होने वाला है। ये दिन 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को भी दर्शाता है, जिन्होंने 17वीं सदी में अयोध्या में लगातार 48 घंटों तक ध्यान किया था। आज जो धर्म ध्वजा फहराई जाएगी उसमें 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ ओम अंकित है। ये ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नगर स्थापत्य कला के अनुरूप बने शिखर पर फहराया जाएगा, जबकि मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला परंपरा में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर के स्थापत्य कला की विविधता को दर्शाता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
प्रधानमंत्री अयोध्या शहर में एक रोड शो करेंगे। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि प्रधानमंत्री आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री का अयोध्या में प्रस्तावित आगमन सुबह करीब 10 बजे होगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर जाएंगे। लगभग 11 बजे वह माता अन्नपूर्णा और राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री श्री राम जन्म भूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे, जो मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित करीब 7,000 विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहां उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या पहुंचकर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए श्रम सुधार भावी अर्थव्यवस्था के निर्माण, अनुपालन सरल बनाने, महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की स्थिति को मजबूत करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को स्वीकार करती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कल भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सुबह राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। प्रदेश के सभी जनपदों में SIR प्रक्रिया का पहला चरण तेजी से पूरा किया जा रहा है। श्रावस्ती के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी पांडे ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे 4 दिसंबर से पहले अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करा दें। जौनपुर जिले के शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग SIR प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। स्थानीय निवासी राजेंद्र ने SIR प्रक्रिया को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि BLO के सहयोग से सभी मतदाता अभियान में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं।
अच्छी पहल है, इसका परिणाम अच्छा होगा और डोर टू डोर ले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, सब समस्या सब हल कर दे रहे हैं, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, इसको हल कर दे रहे हैं, और दिक्कत नहीं है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत से दिल्ली और शामली के बीच दो मेमो रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मेमो रेलगाड़ियां छात्रों और पेशेवरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली शामली सहारनपुर गन्ने का बड़ा हब है ये, और यहाँ पर किसानों की छात्रों की बहुत एक बड़ी डिमांड है, जिस कारण से प्रधानमंत्री जी ने इस रूट पे बहुत ध्यान देकर कई अपग्रेड्स किए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया है। दो ट्रेन सर्विसेज चालू की गई हैं जो कि दिल्ली को शामली से जोड़ेगी। इस लाइन को डबल करने का काम हाथ में लिया है और बहुत जल्दी दिल्ली से शामली वाले सेक्शन को डबल किया जाएगा।
इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए मिशन के रूप में काम किया जा रहा है।
जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली है, तब से उत्तर प्रदेश रेलवे के विकास के लिए बहुत बड़ा एक मिशन की तरह काम चालू हुआ है। जहां पहले मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट होता था पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, वहां मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए का बजट 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें 19,858 यानी करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। इन 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5,272 किलोमीटर नए ट्रैक बने।
इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एक आधुनिक स्किल सेंटर का भी उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने बताया कि बागपत के युवाओं को आधुनिक तकनीक और कौशल से जोड़कर स्किल हब बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के हीरक जयंती समारोह का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के लिए यह गर्व का मौका है कि यह ऐतिहासिक आयोजन लखनऊ में हो रहा है। 29 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश से लगभग 30,000 से अधिक स्काउट्स एवं गाइड्स कैडेट्स शामिल हो रहे हैं। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण में कल क्लासिक फिल्म मुरलीवाला का विशेष प्रदर्शन किया गया। कल ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संगीतमय कार्यक्रम इफिस्टा का शानदार समापन हो गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में कल महान अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि भी दी गई। उनके लिए दर्शकों और कलाकारों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद भी उपस्थित थे। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि फिल्मोत्सव में देश विदेश की फिल्मों और क्षेत्रीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के अलावा कई अलग अलग गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही है। फिल्म अभिनेता पद्मभूषण धर्मेंद्र का कल मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से पूरा देश दुखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई गण्यमान्य हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित करीब 7,000 विशिष्ट लोग बनेंगे ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा। प्रधानमंत्री ने नए श्रम सुधारों को देश को मजबूत बनाने के प्रति सरकार की वचनबद्धता का प्रतीक बताया। कहा, दुनिया एक वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को कर रही है स्वीकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बागपत के बड़ौत रेलवे स्टेशन से 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए मिशन के रूप में काम कर रही है सरकार। और जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में हुआ निधन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने जताया दुख। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।